हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के इस बुधवार के कार्यक्रम में। सभी को सुनाई दे रहा है पीछे तक? हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो पिछले बुधवार को हमने दो श्लोक लिए थे, श्लोक क्रमांक 13 और श्लोक क्रमांक 14। हालांकि श्लोक क्रमांक 14 हमने पूर्ण प्रकार से उसकी चर्चा नहीं की थी, इसलिए श्लोक क्रमांक 14 हम फिर से ले रहे हैं। श्लोक क्रमांक 13 याद है संजय क्या बता रहे हैं? अब सभी प्रकार के वाद्य जो रणभूमि में बजाए गए, शंख, भेरी, गोमुख, आनक, पणव, ये सारे वाद्य जो कि वैदिक वाद्य हैं, और ये सारे वाद्य बजाए गए जब भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया, और भीष्म पितामह इन्होंने अपना शंख बजाया दुर्योधन को हर्ष दिलाने के लिए। और एक शब्द उन्होंने, दुर्योधन ने जो कुछ अपना भाषण दिया, इसके संदर्भ में दोनों द्रोणाचार्य और भीष्म इन्होंने एक शब्द तक नहीं कहा, परंतु शंख ध्वनि के द्वारा सूचित कर दिया कि तुम जो चाहते हो वो हम करने वाले हैं, युद्ध। और शंख की गर्जना वो संकेत दिला रही थी कि अब युद्ध प्रारंभ होने वाला है। और श्लोक क्रमांक 14 ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि इस श्लोक से अब भगवान श्री कृष्ण एंट्री ले रहे हैं भगवद गीता में। तत श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यंदने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः तत श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यंदने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः तत श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः। कुछ विशेष शब्द इस श्लोक में, माधव और पांडवश्चैव, कि भगवान श्री कृष्ण को यहां पर माधव इस नाम से पुकारा गया है, और इसकी भी चर्चा हम करेंगे कि क्यों माधव नाम से पुकारा गया है भगवान श्री कृष्ण को। और अर्जुन पांडवश्चैव, अर्जुन के विषय में बताया है, दिव्य शंखौ, दोनों ने अपने दिव्य शंख बजाए, तो इसके विषय में श्लोक में कहा गया है श्वेतैर हयैर युक्ते। इसका अर्थ क्या है? हयैर संस्कृत में घोड़ों को कहते हैं, जैसे भगवान ने एक अपना अवतार लिया हयग्रीव, भगवान ने अपने विभिन्न अवतार लिए हैं अलग अलग योनियों में, हर एक योनि में भगवान ने अवतार लिया। भगवान सूकर के रूप में आए, कैसे? वराह देव। और भगवान कूर्म के रूप में, मत्स्य के रूप में, वैसे ही हयग्रीव भगवान घोड़े के रूप में भी अवतरित हुए। तो यहां पर श्वेतैर हयैर युक्ते का अर्थ है कि माधव और अर्जुन दोनों युक्त थे श्वेत घोड़ों से युक्त रथ पर। और महती चंदने, और वो घोड़े साधारण घोड़े नहीं थे, या वो रथ साधारण रथ नहीं था, महती बहुत महान वो रथ था। तो ये कुछ शब्द हैं जिस पर हम गौर करेंगे कि यहां पर संजय, हरे कृष्ण, मैं सोचा कोई सचमुच का बालक है। तो भगवत गीता में पहली दफे अब भगवान श्री कृष्ण का वर्णन आ रहा है, तो सबसे ज्यादा प्रसन्नचित है संजय, क्योंकि अब इन्हें अवसर मिल रहा है भगवान श्री कृष्ण के विषय में बताने का। तो बहुत प्रसन्न है संजय। और धृतराष्ट्र हालांकि देख नहीं पा रहा संजय की प्रसन्नता को, जब कोई व्यक्ति प्रसन्न होता है तो दिख भी जाता है उसके चेहरे से, तो हालांकि धृतराष्ट्र देख नहीं पा रहा, परंतु धृतराष्ट्र वो समझ गया, क्योंकि जो अंधे लोग होते हैं वो भाषा से समझ जाते हैं कि व्यक्ति की भावना क्या है, किस टोन में बोल रहा है, उस टोन से समझ में आ जाता है। जैसे कई बार आप यदि किसी के साथ फोन पर बात कर रहे हो तो आप उस व्यक्ति को देख नहीं रहे, परंतु वो किस टोन में बात कर रहा है समझ में आ जाता है कि वो प्रसन्न है या अप्रसन्न है, विशेष रूप से उस फोन से जो आपने किया। तो वैसे ही धृतराष्ट्र हालांकि देख नहीं पा रहा, परंतु समझ गया धृतराष्ट्र की संजय बहुत प्रसन्न चित्त वदन से बोल रहा है ये श्लोक, क्योंकि यहां पर माधव भगवान का नाम लेने का अवसर मिल रहा है। तो संजय से हमें सीखना चाहिए कि जब भी भगवान के विषय में बोलने का अवसर मिले तो हमें उत्सुक और बहुत ज्यादा तैयार रहना चाहिए, प्रसन्न चित्त हृदय से भगवान के विषय में कहने के लिए। तो यदि कोई हमसे पूछ रहा है तो भगवान के विषय में यदि बताना है उस व्यक्ति को, तो उत्सुकता होनी चाहिए, लौल्यम होना चाहिए, जैसे संजय के अंदर अभी दिख रहा है। तो ये पूरा श्लोक, ये जो बहुत ही सुंदर दृश्य है, ये श्लोक इस दृश्य को दिखा रहा है कि माधव और अर्जुन श्वेत घोड़ों द्वारा युक्त इस दिव्य रथ के ऊपर आरूढ़। और हमने इन दो शब्दों को लिया था कि माधव और पांडव, इन दोनों के विषय में बताया है कि रथ पर भगवान और भगवान के भक्त दोनों आरूढ़ हैं। तो जैसे शक्ति और शक्तिमान, इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। यदि कहां पर शक्ति आप देख रहे हो तो शक्तिमान अवश्य होना चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी यहां इन तारों से बह रही है, अर्थात पावर हाउस है जहां से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। तो ये सारे उदाहरण दिए गए हैं, सूर्य एवं सूर्य प्रकाश, कि बिना प्रकाश के सूर्य क्या, और सूर्य है कैसे हम समझ सकते हैं सूर्य प्रकाश से। तो ये उदाहरण दिया गया है राजा एवं राज्य, बिना राज्य का कोई राजा हो सकता है? यदि वो दूल्हे राजा भी हो फिर भी उसका छोटा सा राज्य है, इसलिए उसे दूल्हे राजा बोलते हैं, कम से कम एक दिन तो बोलते हैं। वैसे ही भक्त एवं भगवान, जैसे शक्ति को शक्तिमान से अलग नहीं किया जा सकता, जैसे सूर्य प्रकाश को सूर्य से अलग नहीं किया जा सकता, जैसे राज्य को राजा से अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही भक्त को भगवान से और भगवान को भक्त से अलग नहीं किया जा सकता। तो वैसे ही यहां पर माधव पांडवश्चैव, तो संजय भी केवल अर्जुन के विषय में नहीं बता रहे, हालांकि धृतराष्ट्र का प्रश्न केवल अर्जुन के संदर्भ में था, कि दुर्योधन ने और अर्जुन ने क्या किया बताओ। परंतु यहां पर संजय मानो धृतराष्ट्र पूछे तुम ये माधव के बारे में क्यों बता रहे, वो तो ड्राइवर है। अब जैसे कोई बड़ा व्यक्ति यदि गाड़ी में से जा रहा है, यदि कोई प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी में बैठकर जा रहा है तो हम कैसे कहेंगे देखो देखो ड्राइवर और प्रधानमंत्री जा रहा है, ऐसे बोलेंगे? केवल इतना ही बोलेंगे ना, प्रधानमंत्री जा रहा है, ड्राइवर के विषय में तो नहीं बोलेंगे। तो यहां पर ये गौर करने वाली बात है कि यदि अर्जुन के विषय में मामका पांडवाश कि पांडु के पुत्रों ने क्या किया, तो यहां पर माधव तो पांडु के पुत्र है नहीं, तो यहां पर संजय अपनी तरफ से क्यों ऐड कर बता रहे हैं कि यदि अर्जुन के बारे में बताना है तो फिर माधव पहले माधव का नाम दिया, क्योंकि दोनों को अलग नहीं किया जा सकता कि ये दोनों सिक्के के दोनों बाजू हैं, यदि एक बाजू लेनी है तो दूसरा उसके साथ आएगा। तो यदि भक्त के बारे में बताना है तो भगवान के विषय में बताना होगा, और यदि भगवान के विषय में बताना है तो भक्त के द्वारा ही बताना होगा। तो इसलिए ये जो भगवद गीता का ये जो दृश्य है जो अब संजय हम सबको दिखा रहे हैं, हालांकि धृतराष्ट्र को दिखा रहे हैं परंतु वो केवल शारीरिक रूप से अंधा नहीं बल्कि आंतरिक रूप से भी अंधा है, इसलिए उसे ये सुंदर दृश्य नहीं दिख रहा। परंतु भगवद गीता यदि हमें समझनी है पूर्ण प्रकारेण ठीक से यथा रूप, तो हमें कृष्ण और अर्जुन का संबंध पहले समझना होगा। जब तक कृष्ण और अर्जुन का संबंध हम नहीं समझ पाएंगे तब तक भगवद गीता का एक अक्षर पल्ले नहीं पड़ने वाला, चाहे कंठस्थ कर लो बाय हार्ट कर लो और सुना दो, परंतु भगवद गीता अंदर बैठने नहीं वाली जब तक कि हम कृष्ण और अर्जुन के संबंध को नहीं समझ सकते। इसलिए ये चैतन्य चरितामृत में कथा है, जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत गए अपनी यात्रा में तो श्रीरंगम पहुंचे, रंगनाथ जी का मंदिर जहां है, और वहां पर उन्होंने एक ब्राह्मण को देखा जो अनपढ़ था, बिल्कुल जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता, परंतु वह रोज अपने हाथ में भगवद गीता लेकर रोया करता था, और बाकी सारे पंडित श्रीरंगम के वो खिल्ली उड़ाया करते थे इसकी कि एक तो अनपढ़ गंवार और वो भी हाथ में लिए है भगवद गीता, अरे बारह खड़ी वगैरह लिए होता तो फिर भी ठीक है, समझ लेते कि सीख रहा है पढ़ना लिखना, परंतु भगवद गीता वो भी संस्कृत में और वो रो रहा है भगवद गीता हाथ में लेकर, तो ये लोग हंसते और ये ब्राह्मण रोता। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब इस ब्राह्मण को देखा रोते हुए तो चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने जाकर इससे पूछा कि तुम कौन हो और तुम ये हाथ में गीता लेकर रो क्यों रहे हो? तो इस व्यक्ति ने कहा कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे यह आदेश दिया कि मैं रोज भगवद गीता का अध्ययन करूं, हालांकि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता परंतु फिर भी गुरु का आदेश है इसलिए मैं गीता हाथ में लेता हूं, और जो भी मुझसे बन पड़ता है मैं प्रयास करता हूं गीता का अध्ययन करने का। तो चैतन्य महाप्रभु पूछे तो वो तो ठीक है परंतु रो क्यों रहे? तो ये ब्राह्मण कहता है कि और इसने कभी गीता खोली भी नहीं, गीता बिना खोले ही ये व्यक्ति रोते रहता दिन भर गीता को हाथ में लिए। तब फिर इस व्यक्ति ने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि जब भी मैं गीता हाथ में लेता हूं और इस दृश्य को देखता हूं कि भगवान स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम वो रथ हांक रहे हैं अपने ही भक्त का। तो इस दृश्य को जैसे ही मैं देखता हूं तो मेरे आंखों से आंसू आने लगते हैं और मैं भगवान की भृत्य वश्यता को देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। तो चैतन्य महाप्रभु इस ब्राह्मण से कहते हैं कि तुम ही ने वास्तविक रूप में गीता समझ ली है बिना खोले, क्योंकि तुमने जान लिया है कि गीता का मर्म क्या है, भक्ति। और वो भक्ति अर्जुन और कृष्ण के द्वारा दिख रही है। तो इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि शुद्ध अशुद्ध गीता पोड़ी गुरु आज्ञा मानी, कि हालांकि बाकियों के दृष्टिकोण में वो अशुद्ध तरीके से गीता पढ़ रहा था, परंतु क्योंकि अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा था ये व्यक्ति और जो गीता का मर्म है वो जान लिया इसने, भक्ति, तो इसने गीता का सार जान लिया। और यदि किसी व्यक्ति ने सारी गीता जान ली, पूरी गीता पढ़ ली और उस पर टीका कर रहा है और प्रवचन भी दे रहा है, परंतु यदि इस बात को नहीं पहचाना उसने कि कृष्ण और अर्जुन में भक्ति का संबंध कैसे स्थापित हुआ है, तो उसने गीता का ग भी शुरू नहीं किया। एक और दक्षिण भारत की कथा है कि जिसके अंदर कैसे जब कोई भक्त भक्ति को प्राप्त कर लेता है तो कैसे भगवान केवल उस भक्ति को महत्ता देते हैं। ये गुरुवायूर मंदिर की कथा है। गुरुवायूर मंदिर आपने सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध है दक्षिण भारत में। और वहां पर रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हुआ करता था, अब भी होता है। तो बड़े बड़े पंडित और वहां के संस्कृत के ज्ञाता वो विष्णु सहस्त्र का नाम गुरुवायुर इनके, विष्णु भगवान इनके लिए वो गाते हैं। तो हुआ एक दिन ऐसा कि एक व्यक्ति जो कि वहां पर साधारण सा वो व्यक्ति वो रोज दर्शन के लिए आया करता, तो वो पंडित पुरोहित जो थे वहां के वो उस दिन थोड़ा व्यस्त थे भगवान की पूजा में। तो उन्होंने इस व्यक्ति को कहा कि आज तुम पढ़ लो विष्णु सहस्त्र नाम, जो रोज पढ़ने का नियम था। तो इस व्यक्ति को कहा कि तुम पढ़ो। तो ये व्यक्ति कोई ज्यादा बड़ा संस्कृत का कोई विशेषज्ञ या ज्ञाता नहीं था, इसे जितनी आती थी संस्कृत उस हिसाब से ये उच्चारण कर रहा था। तो विष्णु सहस्त्र नाम में एक पद है संस्कृत में, अप्रमेय ऋषिकेश पद्मनाभ अमर प्रभु, ये संस्कृत में विष्णु सहस्त्र नाम में आता है, जिसमें बताया गया है कि भगवान अप्रमेय सभी वेदों के परे हैं। अप्रमेय ऋषिकेश, जो ऋषिकेश है सभी हमारी इंद्रियों के ईश्वर हैं, पद्मनाभ जिन्हें पद्मनाभ कहा गया है, अमर प्रभु कि जो अमर हैं और सबके प्रभु हैं। और ये जो व्यक्ति जब इसने ये पद कहा तो गलत छलत कह दिया, इसने कह दिया अप्रमेय ऋषिकेश पद्मनाभ मर प्रभु, अमर प्रभु के बदले कह दिया मर प्रभु। तो इनमें से एक पंडित जो पूजा कर उसने सुन लिया, आकर बाहर चिल्लाता है, अरे मरो तुम, इतना बड़ा अपराध, अरे तुम्हें बोलना नहीं आता, उच्चारण करना नहीं आता ठीक ठीक तो बोल दिए होते, भगवान के सामने इतना बड़ा अपराध कि तुमने उन्हें मर प्रभु कहा, बाहर निकलो। उसे बाहर निकाल, धक्के मारकर बाहर निकाल। तो भगवान गुरुवायुर वो इस पंडित के सामने प्रकट हुए दो तमाचा लगाया इस पंडित को। इसका भी सौभाग्य देखो कि भगवान के हाथ तमाचा मिला इसे, तो इसे दो तमाचा लगाया जोर से और इसे पूछते हैं कि वो जो पद उसने कहा, अप्रमेय ऋषिकेश पद्मनाभ मर प्रभु, तो विष्णु सहस्त्र नाम के अनुसार अमर प्रभु का एक और अर्थ है कि जो अमरों के प्रभु हैं, जो अमर हैं उनके जो प्रभु हैं वो हैं पद्मनाभ ऋषिकेश। तो भगवान कहे कि क्या मैं केवल अमरों का प्रभु हूं? क्या उसने गलत कहा कि मैं क्या मरों का प्रभु नहीं हूं? जो मरने वाले हैं उनके प्रभु क्या तुम हो? तो उसने सही कहा कि मैं अमरों का और मरों का दोनों का प्रभु हूं। और ये तो कांप रहा था, ये जब पहले तो भगवान सामने और वो भी क्रोध में और वो भी थप्पड़ लगाए हैं और बता रहे हैं कि मरों का प्रभु कौन है फिर यदि मैं नहीं था। तो उस दिन से आज तक गुरुवायुर मंदिर में वहां पर जब ये पद गाया जाता है तो वो जानबूझकर अप्रमेय ऋषिकेश पद्मनाभ मर प्रभु कहते, हालांकि विष्णु सहस्त्र नाम में अमर प्रभु है, परंतु ये उस मंदिर में आज भी यदि आप जाओ विष्णु सहस्त्र नाम ऐसे ही गाया जाता है। किसी की हिम्मत नहीं आज कि कोई वहां पर उसे अमर प्रभु कह दे, तो फिर जो मर के प्रभु हैं वो आ जाएंगे। तो इसलिए बताया गया है कि भगवान भक्त की भक्ति देख रहे हैं यहां पर, इसलिए चैतन्य भागवत में ये श्लोक है कि मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे अभयम तु समम पुण्यम भावग्राही जनार्दन। कि जो संस्कृत बहुत अच्छी से जानता है धीर है, धीरो वदति विष्णाय, नहीं मूर्खो वदति विष्णाय, कि जो मूर्ख व्यक्ति है जो संस्कृत नहीं जानता वो विष्णवे को विष्णाय कहेगा। संस्कृत में प्रथमा और चतुर्थी का संबंध काफी गहरा होता है कि यदि प्रथमा में अ इस्तेमाल किया गया है अ अक्षर, तो अ चतुर्थी में आय बनता है, समझे? नहीं, जैसे कृष्ण, तो कृष्ण शब्द अ से अंत होता है तो वो प्रथमा है, परंतु यदि उसे चतुर्थी में कोई कहेगा संस्कृत व्याकरण के अनुसार तो कृष्णाय होता है, तो अ आय बनता है। परंतु कोई धीर व्यक्ति जो संस्कृत जानता है वो सही सही इस प्रकार से कहेगा कृष्ण का कृष्णाय, परंतु जो मूर्ख है वो नहीं जानता संस्कृत व्याकरण को, तो वो देखता है कि यदि कृष्ण कृष्णाय हो जाता है तो विष्णु विष्णाय होना चाहिए। नहीं, वो गलत है, क्योंकि वहां पर प्रथमा उ है विष्णु, तो फिर चतुर्थी में वो विष्णवे हो जाता है। तो जो संस्कृत का ज्ञाता नहीं वो समझे कि कृष्ण यदि कृष्णाय होता है तो विष्णु विष्णाय होना चाहिए, तो लोग हंसते हैं, ए क्या कुछ आता नहीं। तो इस श्लोक में कहा गया है मूर्खो वदति विष्णाय, मूर्ख विष्णाय कहेगा, धीरो वदति विष्णवे, जो धीर है वो बराबर कहेगा विष्णवे। अभयम तो समम पुण्यम, दोनों बराबर हैं भगवान के दृष्टिकोण में, या फिर जो गलत शलत बोल रहा है परंतु यदि उसके अंदर भाव है तो भावग्राही जनार्दन, श्री जनार्दन उसके भाव को ग्रहण करते हैं, भक्ति को ग्रहण करते हैं। इसलिए यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें माधव और अर्जुन की भक्ति को दर्शाया गया है। इसलिए ये बहुत ही सुंदर, जब भी हम गीता हाथ में लें तो सबसे पहले ये छवि सामने होनी चाहिए हमारे। इसलिए गीता का जो कवर पेज भी यही है कि इसे देखकर इस भाव में गीता पढ़नी चाहिए जैसे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संबंध यहां पर दर्शाया गया। अब भगवान श्री कृष्ण का गीता में सर्वप्रथम उल्लेख हो रहा है अपने ही भक्त के सेवक के रूप में। देखिए, जो सबसे बड़े नायक हैं पूरे भगवद गीता के, मेन हीरो, उनका एंट्री कैसे हो रहा है, देखो कैसे हो रहा है, ड्राइवर के रूप में। कोई भी ये जो पिक्चरें होती हैं इसमें हीरो का एंट्री एकदम गाना बजाने के साथ जोरदार ऐसा एंट्री लेता है। यहां पर जो सबके नायक हैं, नायकानाम शिरोमणि, वो अपना एंट्री ले रहे हैं अपने भक्त के सेवक के रूप में, भक्त दृश्यतः। तो यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण है समझना कि भगवान ने अर्जुन का सारथ्य जो लिया है, इसके पीछे भगवान क्या दर्शा रहे हैं कि भगवान हमें सिखा रहे हैं कि यदि भगवान तक किसी को पहुंचना है तो बिना सेवा के, और वो भी बिना भक्त की सेवा के नहीं पहुंच पाएगा कोई। ये भगवान अपने इस श्लोक के द्वारा बता रहे हैं। तो सबसे पहले भगवान ने एक सारथी के सारे नियमों का पालन किया। अब सारथी के नियम क्या क्या होते हैं कि रणभूमि में सारथी के नियम होते हैं कि रोज रथी से पहले सारथी उठे। ये नहीं कि रथी उठ गया और अब जाकर ढूंढ रहा है कहां है ड्राइवर, ड्राइवर कहां है, और ड्राइवर खर्राटे मार रहे हैं। आजकल भी देखा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति ड्राइवर रखता है तो वो ड्राइवर पहले गाड़ी साफ करता है, पहले उठ जाता है और गाड़ी तैयार रखता है ना मालिक के लिए। तो वैसे ही सारथी के नियम थे कि सबसे पहले रथी से पहले उठ जाए और उठकर रथ को रोज साफ करना, घोड़ों को खिलाना, नहलाना, उन्हें अच्छे पोशाक पहनाना, और बहुत सुंदर सबके रथ हुआ करते थे सजे हुए, और वो भी सबसे ज्यादा सुंदर रथ अर्जुन का था कि सभी प्रतीक्षा में रहते। अर्जुन का रथ जैसे ही रणभूमि में आता तो वो सबसे आलीशान रथ अर्जुन का था। जैसे किसी ऑफिस में सबसे ज्यादा आलीशान गाड़ी जब आती है तो उसके उसे देखने के लिए सब लोग तैयार रहते, तो वैसे रणभूमि में रोज 18 दिन अर्जुन के रथ को देखने के लिए, केवल अर्जुन के रथ को देखने के लिए इतने लोग एकत्रित होते थे। रथ ही इतना आलीशान था। ये जो रथ अर्जुन का, इसकी हम चर्चा करेंगे कि अर्जुन को ये रथ मिला कहां से। केवल जो ध्वजा, जो ध्वजा अर्जुन के रथ की, वो ध्वजा का जो ऊपर का भाग वो बादलों को स्पर्श करता। ये नहीं, हम फोटो में जो देखते हैं तो हमें लगता है जो होगा छोटा सा रथ बैठकर दोनों, दो लोगों के लिए कितनी जगह होगी, कितनी जगह चाहिए रथ। ये रथ इतना बड़ा था कि उसका ध्वज ऊपर का भाग बादलों को स्पर्श करता, इतना विशाल ये रथ। स्वयं अर्जुन 15 फुट के, तो सोचिए 15 फुट का आदमी, उसे बैठने के लिए कितना बड़ा रथ लगेगा। तो इतना विशाल रथ, और भगवान इस रथ को रोज तैयार करते अपने हाथों से। ऐसा नहीं किसी को लगा दिया कि लक्ष्मी को बुलाकर चलो तुम करो सब, वैकुंठ से लक्ष्मी को बुलाकर नहीं लगाए साफ सूफ करने में, स्वयं अपने हाथों से घोड़ों को, घोड़ों का सौभाग्य देखिए। एक भक्त बोल रहे थे, अरे मैं घोड़ा भी यदि बन जाता अर्जुन के रथ का तो भगवान के हाथ से घास मिलता खाने के लिए। तो भगवान अपने हाथों से घोड़ों को खिलाते, नहलाते, उनको अच्छी पोशाक पहनाते, सजाते, और फिर रथी तैयार होने से पहले सारथी को रथ उसके तंबू के सामने खड़ा रखना कि बिल्कुल भी समय वाया नहीं जाना चाहिए। और फिर जैसे ही रथी बाहर आता है तो जैसे ड्राइवर गाड़ी का दरवाजा खोलता है, वैसे भगवान अपना हाथ देते थे कि अर्जुन भगवान के हाथ के सहारे रथ के ऊपर चढ़ सके। और यदि एक नियम आप सुनना चाहेंगे कि इसके अलावा कि जैसे ही उस दिन का युद्ध हो गया तो रथी का नियम था कि रथी तुरंत जाकर अपने शयन कक्ष में चला जाता और फिर सारथी पार्किंग वगैरह करने के लिए, तो भगवान पार्किंग करते रथ का और रात को घोड़ों को संभाल कर फिर भगवान अंत में, तो सबसे अंत में सारथी जाएगा और सबसे पहले सुबह सारथी आएगा। और युद्ध के समय ये नियम है कि जो रथी है वो युद्ध कर रहा है और युद्ध में इतनी आवाजें होती हैं, युद्ध भूमि में सब तरफ युद्ध चल रहा है, तो जब रथी को सारथी को बोलना होता है कि अब बाएं जाओ दाएं जाओ, तो ऐसा नहीं कोई इंडिकेटर लगा दिया या हाथ में तो स्टीयरिंग व्हील है नहीं कि दाएं बाएं जाएं, और यदि वो सारथी को बोलने का प्रयास करे यदि रथी, तो सारथी को सुनाई नहीं देगा क्योंकि घोड़ों की आवाज, रथ के पहियों की आवाज, और विशेष रूप से अर्जुन के रथ के विषय में बताया गया है कि अर्जुन के रथ के ध्वज पर हनुमान जी, कपि ध्वज कहा गया है कि हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज के ऊपर विराजमान। तो हनुमान जी ने यह प्रण दिया था कि जब भी कोई योद्धा को अर्जुन, या जब भी अर्जुन का रथ चलेगा तो जो पहियों की गड़गड़ाहट होती है उसके साथ हनुमान जी चित्कार लगाएंगे। तो अर्जुन का रथ जब चलता था तो केवल पहियों की आवाज और हनुमान जी की चित्कार से आगे का योद्धा धराशायी हो जाता, आगे की आवाज सुनकर ही भाग जाता था हनुमान जी की जोरदार चिंघाड़ सुनकर। तो इस अवस्था में यदि अर्जुन को भगवान को कहना है कि रथ को बाएं लो वहां पर मुझे युद्ध करना है तो कैसे सुनाई देगा भगवान? तो रथी सारथी को कैसे संकेत देता है? अपने पैरों को उसके कंधे पर मारकर कि यदि बाएं मुड़ना है तो बाएं कंधे पर ऐसे सारथी को लात मारकर, तो फिर सारथी समझ जाता था कि बाएं जाना है, दाएं तो दाएं कंधे पर लात मारकर। तो भगवान अर्जुन की लात अपने कंधों पर ले रहे थे, इसलिए यहां पर ये समझना बहुत आवश्यक है कि इन दोनों में कितना घनिष्ठ प्रेम था, कि साक्ष्य रस में ये दोनों थे, दोनों एक दूसरे को सखा मानते थे, और इसलिए भगवान चाहते थे कि अर्जुन इस प्रकार से इनसे व्यवहार करे, इसलिए तो इनका सारथी बने थे। तो सारे सारथी के नियमों का पालन भगवान ने किया, फिर हर विकट परिस्थिति में अर्जुन की रक्षा की भगवान ने, कि अर्जुन बिना भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के युद्ध नहीं जीत पाते। और ये उदाहरण दिया गया है कि भगवान अर्जुन की रक्षा कैसे कर रहे थे 18 दिन उस युद्ध में, जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती है। इसका उदाहरण हमने रामायण से भी लिया, जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती हैं, वैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की रक्षा कर रहे थे 18 दिन रणभूमि पर। और एक प्रसंग ऐसा है कि जब अर्जुन सभी कुरु सेना को परास्त कर रहे थे और दुर्योधन अब घबराया हुआ यहां वहां भाग रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा दुर्योधन को कि कैसे मैं अब इस अर्जुन को रोकूं। अर्जुन एक ऐसा समय था कि अर्जुन जैसे कोई तूफान चलता है, वैसे अर्जुन तूफान की तरह सबको खत्म किए जा रहे थे आगे बढ़ते हुए। तो दुर्योधन चिंतित हुआ और उस चिंता में दुर्योधन के पास एक दुर्योधन की सेना का एक योद्धा आया जिसका नाम था भगदत्त। और ये भगदत्त ने कहा कि दुर्योधन चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा इस अर्जुन को। दुर्योधन ने देखा, तुम तुम्हारा नाम बताओ, कौन तुम? इतने सारे योद्धा थे, दुर्योधन जानता नहीं था सबको। तो भगदत्त ने अपना नाम बताया और अपना इतिहास बताया कि भगदत्त को एक वरदान मिला था कि भगदत्त को एक गदा, एक ऐसी गदा मिली थी कि वो गदा भगदत्त किसी के ऊपर भी चलाए तो वो व्यक्ति को मरना ही मरना है। ये वरदान भगदत्त को मिला था। तो भगदत्त ने अपनी गदा दिखाई कि ये गदा मैंने संभाल कर रखी है, आज तक मैंने किसी पर इस्तेमाल नहीं की है, और यदि तुम चाहो तो अर्जुन के ऊपर मैं ये गदा इस्तेमाल कर सकता हूं, परंतु नियम इसका है वन टाइम यूज, यूज एंड थ्रो। इसका नियम यह है कि एक बार ही इसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, फिर इसको फेंकना होगा, उसके बाद ये विफल हो जाती है गदा। दुर्योधन, अरे रे, इसे तुरंत लेकर जाओ अर्जुन के रथ के सामने। तो भगदत्त को दुर्योधन संभाल कर, और अर्जुन वो छोटे मोटे योद्धा से युद्ध नहीं करते थे, जो बड़े बड़े आते थे उनको अर्जुन परास्त कर रहे थे, क्योंकि छोटे मोटे को तो नकुल सहदेव यही संभाल लेते थे। तो दुर्योधन अब चाहता था कि ये जो भगदत्त अपना गदा लेकर अर्जुन से युद्ध करे, तो बाकी अनुमति नहीं दे रहे थे कि अर्जुन के पास जाकर ये युद्ध करें, क्योंकि अर्जुन तक पहुंचना मुश्किल था, बाकी इन सब छोटे मोटों को मार देते थे। तो ये भगदत्त ये दूर से अर्जुन को ललकारने लगा, और अर्जुन व्यस्त थे अपने बाकी योद्धाओं से युद्ध करने में, तो अर्जुन को ललकारने लगा, अरे अर्जुन, अरे क्या लड़ रहा है यहां मेरे सामने? यदि तू असली योद्धा है, मां का दूध पिया है, तो इस प्रकार से ललकार रहा था भगदत्त अर्जुन को। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को संकेत दिया, चलो देखते हैं कौन है चिल्ला रहा है इतना। कृष्ण ने कहा, नहीं नहीं फालतू है, कोई जरूरत नहीं, भगवान जानते हैं ये भगदत्त की क्या योजना है। तो भगवान ने कहा, कोई जरूरत नहीं, वो बाकी लोग संभाल लेंगे। तो अर्जुन ने कहा, नहीं नहीं ये ललकार रहा है मुझे पर्सनली, अरे पर्सनल चैलेंज दिया है इसने, तो मुझे देखना होगा कौन है ये। तो अब रथी का आदेश है तो सारथी को मानना होगा, सारे नियमों का पालन कर रहे हैं। तो भगवान अपने रथ को लेकर गए इस भगदत्त के सामने। तो भगदत्त अब तैयार हुआ, उसने अपनी छिपाई हुई जो गदा बाहर निकाली और प्रहार करने के लिए अर्जुन के ऊपर। तो अर्जुन वो तो धनुर्धर, तो उन्होंने देखा, ये तुम गदा क्यों निकाल रहे? नहीं, मैं गदा से लड़ूंगा, ये मेरा स्पेशलिटी। तो जैसे ही उसने अपनी गदा निकाली अर्जुन के ऊपर मारने के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन का रथ इतनी तेजी से घुमाने लगे कि अर्जुन अचरज में पड़ गए। अर्जुन ने कहे कि अरे कहां ले जा रहे, रथ को कहां ले जा रहे हैं, रुकाओ, इसके साथ युद्ध करना। भगवान बिल्कुल सुने नहीं और घुमाने लगे रथ को। भगदत्त वो भी अपना गदा घुमा रहा है और अर्जुन को ढूंढ रहा है कि कहां अर्जुन का रथ टिके एक जगह पर तो मैं लगाऊं, परंतु भगवान अर्जुन के रथ को रोक ही नहीं रहे थे। एक सेकंड में अर्जुन का रथ भगदत्त के पीछे आए बाएं दाएं यहां वहां। तो अब अर्जुन भी अपने शस्त्र छोड़कर भगवान को देख रहे, क्या कर रहे हैं, और भगदत्त वो भी खड़ा है क्योंकि इतनी तेजी से भगवान घुमा रहे थे रथ को कि भगदत्त को केवल एक लकीर घूमती हुई दिख रही थी, रथ भी नहीं दिख रहा था, इतनी तेजी से भगवान रथ को चला रहे थे। देखिए यही भगवान जो गायों को चराए हैं ऐसा रथ चला रहे थे कि सभी खड़े होकर देख रहे हैं कि इतनी तेजी से इतने से जगह में कोई रथ को कैसे घुमा सकता है। तो भगदत्त वो अब परेशान हुआ, क्या कर रहा है ये सारथी, इसे कोई अकल है कि नहीं, एक जगह पर रुकता क्यों नहीं। तो भगवान रुकते भगदत्त तैयार होता और फिर से भगवान रथ को घुमा। तो भगदत्त चिढ़ गया, जैसे ही भगदत्त चिढ़ गया तो भगवान ने रथ रोका और वो चिढ़कर वो गदा उठाया भगवान के ऊपर मारने के लिए, कि चिढ़ा था भगवान के ऊपर। तो भगवान के ऊपर उसने वो गदा चलाई, भगवान तो अमर प्रभु कि उनको क्या होने वाला है। तो गदा उसने भगवान के चिढ़कर भगवान के ऊपर चलाई, जैसे होता ना कई बार हम कुछ करने जा रहे हैं और कोई व्यक्ति बीच में आनाकानी करता रहा, पहले हम उसे दो तीन लगाते हैं चिढ़कर। तो ये भूल गया कि वन टाइम यूज है और भगवान पर इसने चला दी। जैसे ही भगवान पर चला दी तो भगवान, उन्हें तो कुछ होने वाला नहीं था, तो भगवान फिर अर्जुन से कहे, बस अर्जुन यही मेरा प्रयोजन था, अब चलाओ तीर। तो अर्जुन तब तक कुछ समझे नहीं और भगदत्त समझ गया, अरे फिर फंस गया। तो भगवान अर्जुन की रक्षा इस प्रकार से कर रहे थे कि अपने ऊपर ये भगदत्त जैसों कि गदा का प्रहार ले रहे थे अपने ऊपर। और एक और ये घटना है कि कर्ण के तुणीर में नागपाश गया था। तो ये नागपाश, ये ऐसी तीर, ऐसा बाण जो कि अपने निशाने को कभी चूकता नहीं और निशाने पर लग जाए तो उसे खत्म कर रहेगा। तो कर्ण ने ये बाण छोड़ा अर्जुन के माथे पर, अर्जुन के माथे को मारने के लिए, ताकि वो माथे पर ही लगने पर व्यक्ति मरता। तो कर्ण ने जब छोड़ा तो अपने निशाने को तो चुकेगा नहीं, माथे पर निशाना लगाया था कर्ण ने, तो नागपाश अब निकल चुका है अर्जुन के माथे की तरफ। और भगवान ने देखा कि अर्जुन जानता नहीं कि नागपाश का गुण क्या क्या है। तो अब भगवान देखिए अर्जुन को कैसे बचाते हैं। भगवान ने अपने अंगूठे से रथ को दबाया, जैसे ही रथ को दबाया तो रथ धंस गया नीचे। जैसे ही रथ धंस गया तो अचानक अर्जुन नीचे हुए, अर्जुन का हाइट कम हो गया, नीचे हो गए, और वो जो नागपाश फिर अर्जुन के मुकुट को लग कर गया, जो माथे पर निशाना लगाया था वो मुकुट पर लग कर गया। और केवल पूरे 18 दिन में अर्जुन के ऊपर केवल वही एक प्रहार हुआ जिसमें अर्जुन का मुकुट एक बार गिरा नीचे, बस। न रक्त की एक बूंद भगवान ने गिरने दी अर्जुन की, न कोई चोट, न खरोच। इस प्रकार से भगवान रक्षा कर रहे थे अर्जुन, जैसे पलके आंखों की रक्षा करती है। वो उदाहरण हमने दिया कि यदि सुई भी कोई आंख में चुभोने जाए तो पलक अपने आप को पहले खड़ा कर देती है कि यहां से जाना होगा। तो वैसे भगवान अपने आप को अर्जुन के सामने ऐसा खड़ा रखे थे कि अर्जुन कई बार रोने लगते भगवान के ऐसे प्रेम को देखकर कि आप मेरी रक्षा इस प्रकार से क्यों कर रहे हैं। तो भगवान हर विकट परिस्थिति में अर्जुन की रक्षा उन्होंने की, युद्ध जीतने का सारा श्रेय अर्जुन को दिया। हालांकि ये कथा हमने सुनी कि युद्ध के बाद भगवान ने अर्जुन को कहा रथ से पहले तुम उतरो, क्योंकि भगवान ने फिर दर्शा दिया अर्जुन को कि ये सारा युद्ध मैं यहां पर उपस्थित था इसलिए तुम्हारा रथ टिका हुआ था। परंतु भगवान ने सारे युद्ध जीतने का श्रेय अर्जुन को दिया, मेडल ट्रॉफी जो भी सर्टिफिकेट फर्स्ट प्राइज सब अर्जुन को मिला, भगवान ने अपने लिए कुछ नहीं रखा। तो ये भगवान की कृपा। और यही नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण गुण, अर्जुन की रक्षा करने हेतु लोक में बदनामी अपने ऊपर ली। खैर इसे भी कोई मान लेगा कि किसी दूसरे को श्रेय देने के लिए अपना नाम बड़ा कर लेता है ना कोई, मैंने दे दिया मेरे बलबूते पे जीता अर्जुन। परंतु अर्जुन को जिताने के लिए, अर्जुन की रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान ने अपना नाम खराब किया, ये कोई नहीं कर सकता। कि आजकल ये नाम के ऊपर लोग कितना अपना जीवन न्यौछावर करते हैं, नाम बना रहे, मेरा नाम बना रहे, चाहे काम कुछ ना हो नाम बना रहे। तो नाम प्रतिष्ठा ये सबसे गहरी आसक्ति है कि व्यक्ति अपना शरीर त्यागने के लिए तैयार हो सकता है, धन बाकी सब कुछ, परंतु नाम खराब नहीं होना चाहिए। तो यहां पर भगवान ने अपने नाम प्रतिष्ठा की भी चिंता नहीं की। कर्ण को जब मारना हो रहा था, इसकी हमने चर्चा की, तो भगवान बदनाम हुए हैं कि भगवान का नाम बदनाम हुआ है। कई लोग भगवान कहते हैं कि ये भगवान ने ही गलत आदेश दिया अर्जुन को कि जब वो कर्ण निहत्ता था तभी मारने के लिए। तो भगवान ने कहा चाहे दुनिया कुछ भी कहे, कुछ तो लोग कहेंगे। तो भगवान कहे चाहे मुझे नित्य काल तक बदनामी मिले, परंतु यदि अर्जुन तुम्हारी रक्षा होनी है तो मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगा। तो इन मुद्दों को देखकर हमें थोड़ा बहुत संकेत मिलेगा कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन में घनिष्ठता मित्रता किस प्रकार की थी, विशेष रूप से भगवान अपने आप कैसे दिए। इसलिए यहां पर उन्हें माधव कहा गया है। मां लक्ष्मी को कहे हैं और धव जो कि उनके पिता हैं, सॉरी पति हैं, तो लक्ष्मी के पति, इसलिए उनको नाम है, उनका नाम है माधव। और यहां पर संजय भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं माधव पांडवश्चैव। अब अर्जुन के विजयी होने के लक्षण संजय यहीं पर बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, क्योंकि संजय ने गीता के अंत में भी कह दिया, क्या कहा, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयोर भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। कि जहां पर योगेश्वर कृष्ण और पार्थ धनुर्धर है वहां पर विजय तो निश्चित है। तो यहां पर विजय के लक्षण क्या क्या हैं देखिए अर्जुन के संदर्भ में। सबसे पहले स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके पक्ष में, तो जहां पर भगवान श्री कृष्ण जिसका पक्ष लिए हैं, अरे वो तो जीतना है ही उस पक्ष को। तो ये सबसे पहला लक्षण कि अर्जुन की विजय निश्चित क्यों थी, क्योंकि जो विजय सखे स्वयं जो मूर्तिमान विजेता वो उनके पक्ष में थे इसलिए। दूसरा कारण, भगवान को यहां माधव नाम से उल्लेख किया गया है क्योंकि लक्ष्मी देवी, इनको कहते हैं भाग्य लक्ष्मी भी या भाग्य देवी, जो भाग्य दिलाती हैं। सभी चाहते हैं ना भाग्य हो हमारे जीवन में, इसलिए भाग्य लक्ष्मी, शुभ लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, कौन कौन सी अलग अलग प्रकार की लक्ष्मियां इनकी पूजा होती है। तो सारा भाग्य जो पूरे संसार में है वो उसका डिपार्टमेंट कौन लिए हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन है, लक्ष्मी देवी, एचओडी है वो, भाग्य की देवी है। तो यहां पर जो एचओडी है उनके एचओडी लक्ष्मी देवी के पति वो उपस्थित हैं, तो जहां पर मिस्टर है तो मिसेस तो होना ही है कि नहीं, कि उस जमाने में मिस्टर मिसेस एक साथ हुआ करते थे, कि जहां पर मिस्टर जा रहे हैं वहां मिसेस जाएंगी। ऐसा नहीं कि लक्ष्मी देवी किटी पार्टी के लिए गई हैं और भगवान यू नो यहां पर अकेले सारथी का काम कर रहे हैं। तो यदि भगवान है तो भगवान के साथ भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी देवी जो कि भाग्य की देवी है, तो सारा भाग्य तो अर्जुन के रथ पर है, सोर्स उद्गम स्थान सारे भाग्य का तो भगवान के साथ। ये कारण, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य शंख को बजाया युद्ध से पहले। भगवान के शंख के विषय में कहा गया है दिव्यौ शंखो प्रदद्मतुः, भीष्म पितामह ने जो शंख बजाया उसके लिए दिव्य नहीं कहा गया, शब्द इस्तेमाल नहीं किया, परंतु भगवान ने जब अपना शंख बजाया तो उस शंख को कहा गया है दिव्य, दिव्यौ शंखो। तो दिव्य शंख भगवान ने बजाया, इससे घोषणा कर दी कि अर्जुन विजयी तुम्हारे ही होने वाली, क्योंकि जब मैंने ऐसा शंख बजाया है तो अब दुर्योधन की तो बजा के रखूंगा मैं। और अर्जुन के रथ के बारे में बताया गया है कि श्वेतैर हयैर युक्तैर स्यंदने महती स्थितौ, कि अर्जुन का जो रथ वो बहुत विशेष रथ अर्जुन को मिला था। और इसकी कथा बताई गई है कि इस युद्ध के बहुत वर्ष पहले हस्तिनापुर में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ बैठे हुए थे और संध्या का समय था, शीत लहर बह रही थी समीर, और फिर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा चलो एक वॉक के लिए निकलते हैं, इवनिंग वॉक। ये देखिए अर्जुन का सौभाग्य, भगवान के साथ इवनिंग वॉक करते थे। तो अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण वो इवनिंग वॉक के लिए निकले और बहुत बड़े बड़े महल इत्यादि, तो अर्जुन ने कहा कि नहीं, हम यहां पर जो स्थित वन है खांडव वन, खांडव वन में हम सैर के लिए निकलते हैं, वन में चलते हैं। तो वहां पर वन में उन्होंने प्रवेश किया और वन में भी इतना ऐश्वर्य था कि वन में वहां उन्होंने देखा एक सुंदर एक बेंच बैठने के लिए बनाई हुई थी जो कि हस्ती दंत की थी, आइवरी, आइवरी का बेंच, उसके ऊपर कृष्ण और अर्जुन बैठे और दोनों का वार्तालाप शुरू हुआ। और जैसे ही कृष्ण और अर्जुन का वार्तालाप शुरू हुआ तो एक ब्राह्मण वहां पर दूर से आते हुए दिखे दोनों को, और बहुत तेजस्वी ये ब्राह्मण, इनकी बहुत ऐसे दाढ़ी भी बहुत सुंदर और तेज इनके चेहरे पर। तो जैसे ही इन दोनों ने देखा इस ब्राह्मण को आते हुए, तो पूछा अर्जुन ने कि आप कौन हैं, आपका परिचय बताइए, इस वन में कैसे ब्राह्मण कर रहे हैं। तो ब्राह्मण कहते हैं कि सभी ब्राह्मणों की तरह मैं वो ब्राह्मण हूं जो बहुत खाता हूं। ब्राह्मणों के विषय में बताया गया है, ब्राह्मण भोजन प्रिय, कि ब्राह्मण भोजन के, और वो विशेष रूप से मिठाई। इसका अर्थ ये नहीं कि जो भी भोजन प्रिय या मिठाई प्रिय वो ब्राह्मण है, क्योंकि वो भजन प्रिय भी होते हैं, भोजन और भजन। जैसे कई बार कई बोलते हैं ऐसे ब्राह्मण कि बिना भोजन के भजन नहीं होए गोपाला, ले ले अपनी कंठी माला। कि वो भोजन चाहिए फिर भजन होगा। वो क्या बोलते हैं, आदि पोटोबा नंतर विटोबा, सही कहा। तो फिर इन्होंने, ये ब्राह्मण ने कहा कि जैसे ब्राह्मण बहुत भूखे होते हैं, जस्ट लाइक दे आर वोरेशियस ईटर्स, तो वैसे ही मैं भी उसी ब्राह्मण के समान हूं कि मुझे बहुत खाना है परंतु मैं खा नहीं पा रहा। तो फिर उन्होंने बताया कि वो स्वयं अग्निदेव और वो अग्नि इस पूरे वन को खाना चाहते हैं, अग्निदेव खांडव वन को। तो फिर अर्जुन ने पूछा क्यों नहीं खा पा रहे, तो खाओ। और अग्नि, जैसे हम लोग मुंह से खाते, तो अग्नि कैसे खाएगी, अपनी लौ से, फ्लेम्स, अग्नि वहां से खाती है। तो अर्जुन ने पूछा तो खाओ क्यों नहीं खाते, तो अग्निदेव ने कहा कि समस्या यह है कि मैं जब भी इस खांडव वन को खाने जाती हूं, या अग्निदेव ने कहा कि खाने जाता हूं, तो इंद्र मुझे खाने नहीं देते। तो फिर भगवान ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण ने पूछा क्यों, क्या क्या हो गया इंद्र को, फिर से क्यों नहीं खाने देता। तो फिर कहे कि क्योंकि इंद्र का एक मित्र इस खांडव वन में रहता है, तक्षक सर्प, वो अपने फैमिली के साथ रहता है इस वन में, तो जब भी मैं इसे खाने जाता हूं तो इंद्र वर्षा कर देते, तो फिर अग्नि खाए कैसे, वर्षा हो जाएगी, मैं खा नहीं पाता। तो भगवान श्री कृष्ण ने अग्निदेव से पूछा कि तुम्हें ये खांडव वन ही क्यों खाना है, अरे इतने सारे वन हैं, जाओ कोई भी वन खाओ। तब फिर वो बताते हैं कि हां इसका भी कारण है कि मुझे खांडव वन ही क्यों खाना है, क्योंकि कुछ समय पहले एक राजा हुए श्वेतकी जिनका नाम, तो श्वेतकी राजा ये यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित होती है, तो अग्नि में आहुति डालते हैं घी, तो इतना घी डाल दिया इस श्वेतकी राजा ने मेरे अग्नि में कि मुझे पेट खराब हो गया। ज्यादा घी खा लेने से क्या होता है, दस्त लग जाते हैं ना, तो अग्नि देव को मंदाग्नि हो गई, उनको डिसेंट्री हो गई। तो अग्निदेव कहे कि क्योंकि ये वो श्वेत की राजा ने इतना घी डाल दिया जिसके वजह से अब मुझे ये बदहजमी और ये सब दस्त लग गए हैं, तो ब्रह्मा जी ने मुझे कहा कि खांडव वन में बहुत से जड़ी बूटियां हैं, तो खांडव वन को यदि तुम खाओगे तो ये जड़ी बूटियां तुम्हारे इस समस्या का सुलझा देंगे। तो ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ने यह भी कहा कि इस खांडव वन में बहुत से ऐसे पापी प्राणी हैं और राक्षस हैं कि तुम यदि इन्हें खाओगे तो वो भी सारे खत्म हो जाएंगे, मेरा मैनेजमेंट थोड़ा ठीक रहेगा, ब्रह्मा जी ने कहा। तो फिर अग्निदेव ये सारे कारण बताए, इसलिए अब इंद्र मुझे खाने नहीं देते। तो अर्जुन ने कहा ठीक है, अभी तो मैं यहां पर ऐसे ही घूमने फिरने हम लोग आए, मेरे पास कोई मेरा रथ नहीं है और न मेरे पास बाण है और मेरा धनुष है, तो कुछ नहीं, मैं कैसे, यदि मैं तुम्हारी रक्षा भी करना चाहूं तो कैसे करूं। तो अग्निदेव ने तुरंत वरुण देव इनको पुकारा और वरुण देव से अर्जुन को धनुष दिलवाया। तो वरुण देव ने अर्जुन को धनुष दिया, कौन सा, गांडीव, वो डोनेशन था वरुण देव से, गांडीव, और उसके साथ दो तुनीर जो कि कभी उसमें तीर क्षय नहीं होते, अक्षय तुनीर दो वो अर्जुन को दिए। और फिर अर्जुन ने कहा फिर रथ चाहिए, तो फिर अग्निदेव इन्होंने सोमदेव को फोन लगाया और सोमदेव इन्होंने अपना स्वयं का रथ अग्निदेव को दिया अर्जुन को देने के लिए। तो वो रथ, ये जो रथ जिसके विषय में कहा गया है, ये रथ अग्निदेव सोमदेव से लेकर अर्जुन को दिए, और इस रथ के विशेष घोड़े चार वो चित्ररथ ने उन्होंने डोनेट किया। तो ये घोड़े ऐसे जो कि मन की गति में भाग सकते, मन की गति सब जानते हैं कैसी है ना, तो मन की स्पीड पर ये घोड़े भाग सकते और वो भी कोई भी दिशा में, ये ऐसे घोड़े थे। तो सोमदेव द्वारा रथ, चित्र रथ द्वारा घोड़े, गांडीव और तुनीर वरुण देव द्वारा, ये सब कुछ जैसे मिला तो अर्जुन अब ऐसे रथ को और ऐसे गांडीव धनुष को देखकर उनके अंदर तो और ज्यादा उत्साह हो गया कि किसी को, किसी ना किसी के ऊपर तो चलाना चाहिए। अब इसे पहले जब हमें वो खेलने के लिए जब रैकेट दिया जाता नया टेनिस का रैकेट, तो जैसे उसे देखते तो तुरंत कहां पर है खेलने के लिए कुछ कोर्ट कहां पर है, तो हाथ में खुजली शुरू हो जाती है। हमें याद है बचपन में घर पे जब हमारे लिए टूथब्रश नया लाया जाता, तो जब हमारी माता जी टूथब्रश लाया करती थी, तो जैसे ही टूथब्रश नया लाया है, अभी समय नहीं है ब्रश करने का, कर लिया है, नया लाया तुरंत खोल के ब्रशिंग शुरू। तो जैसे ही अर्जुन को अब गांडीव मिला, तो रथ और गांडीव और ऐसा तुनीर और इतने बाण, तो कहां पर है, किसे मारना है बताओ। तो जैसे ही अर्जुन ने प्रत्यंचा चढ़ाई उस धनुष को, धनुष के ऊपर अर्जुन ही प्रत्यंचा चढ़ा सकते थे, इसलिए वरुण देव वो स्वयं गांडीव पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पा रहे थे, तो उन्होंने कहा मैं लेकर भी क्या करूंगा, अर्जुन जैसे को किसी को देना चाहिए जो प्रत्यंचा तो चढ़ा पाए इसके ऊपर। तो जैसे ही अर्जुन ने प्रत्यंचा चढ़ाई और देखा कि प्रत्यंचा सही चढ़ी है कि नहीं, इतनी जोर से आवाज हुई कि वहां के सारे प्राणी छूमंतर होने लगे खांडव वन के। और फिर अर्जुन ने अग्निदेव से कहा चलो महाप्रसादे गोविंदे शुरू करो, खाना शुरू करो। तो अग्निदेव वो बोले कि जाऊं सही में, अरे जाओ चिंता मत करो, अब रथ है, गांडीव है, सब कुछ है मेरे पास, और ये है ना कौन, माधव, तो फिर चिंता क्यों कर, भगवान ने कहा मैं हूं ना, चिंता क्यों करते हो। तो फिर अर्जुन उन्होंने चिल्लाए जोर से, और फिर तक्षक और तक्षक की पत्नी और तक्षक के पुत्र अश्वसेन वो सभी वहां से अब निकलने के लिए बाहर गए, समझ गए कि अर्जुन, अब अर्जुन के सामने क्या हम टिक पाएंगे, तो निकलने के लिए गए। तो तभी अर्जुन ने अपना तीर चलाया और तक्षक की पत्नी पर तीर चला दिया, पहले कि पहले शक्ति को पकड़ेंगे फिर शक्तिमान को, तो तीर चला दिया। तो फिर तक्षक तो निकल गए अपने पुत्र के साथ, और तभी सभी देवी देवता जाकर इंद्र से कहे अरे तुम्हारे मित्र के ऊपर प्रहार हो रहा है, जाकर देखो वहां पर नीचे क्या हो रहा है खांडव वन में। तो इंद्र अपने ऐरावत पर बैठकर वो उन्होंने पहले तो अपने बाकी सारे शस्त्र छोड़ दिए, तो बाकी सारे शस्त्र तो अर्जुन ने एक एक बाण से ही इंद्र के खत्म कर दिए। फिर इंद्र अपने बादलों को बुला लिया कि अग्नि वो खा रही है पूरे वन को, तो फिर अपने बादलों को संवर्तक बादलों को बुलाया और एक एक बूंद, जैसे कि श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में भी वर्णन है, एक एक बूंद खंबे के समान, एक एक बूंद उस वर्षा का वो गिरने लगा। परंतु अग्निदेव अब इतना फैल चुके थे कि वो बूंद पानी का नीचे गिरने से पहले वाष्प में परिवर्तित होकर उड़ जाता, इवेपोरेट हो जाता। तो इंद्रदेव उन्होंने देखा कि ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं, तो फिर इंद्रदेव ने, क्योंकि वो वर्षा के मंत्री हैं, तो उन्होंने अब एक पानी का शीट बनाया, दीवार जैसे, पानी की दीवार, और पानी की दीवार उस वन के ऊपर फेंकी। तो जैसे ही अग्निदेव ने देखा कि पानी की दीवार आ रही है, तो अग्निदेव अर्जुन की तरफ देखे खाते खाते, अरे देखो अभी तक तो पूरा भी नहीं हुआ, ये कौन बीच में आ रहा है। तो अर्जुन ने अपने तुणीर से सारे बाण छोड़े और एक छतरी बना दी, बाणों की छतरी बना दिया, और एक बूंद भी उस छतरी से नीचे खांडव वन में नहीं गिर सकी। तब इंद्र समझ गए कि ये कोई साधारण कोई व्यक्ति नहीं, स्वयं जाना पड़ेगा। तो फिर स्वयं इंद्र फिर अपने ऐरावत पर विराजमान होकर गए और अपने वज्र को लेकर, तो वज्र फेंका अर्जुन के ऊपर, तो अर्जुन ने वज्र को भी परास्त कर दिया। तो फिर इंद्र ने सोचा कि ये तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो इंद्र फिर जान गए कि ये, अरे ये तो मेरा ही पुत्र है अर्जुन, परंतु फिर मेरा पुत्र मेरे अगेंस्ट में ऐसे ही सब कर रहा है। तो फिर अपने सारे अस्त्र शस्त्र निकाले, यहां तक कि एक पहाड़ उखेड़ के पहाड़ फेंकने लगे। तो अर्जुन ने उस पहाड़ को भी चूरे में परिवर्तित कर दिया। और इंद्र फिर समझ में उन्हें नहीं आया, और तब तक केवल अर्जुन को देखा था इंद्र ने, फिर भगवान पीछे से निकलकर अपना दर्शन दिए इंद्र को। अच्छा इंद्र भूल गए, पंगा लिया था पहले गोवर्धन लीला में। तो इंद्र ने जब भगवान को देखा तो अब सब कुछ छोड़ छाड़ कर दंडवत और ये वो, और फिर इंद्र समझ गए कि हाँ नहीं नहीं मैं गलती हुई बहुत बड़ी। तो भगवान ने, और बाकी सारे देवी देवता भी आ गए देखने के लिए कि क्या हो रहा है, कौन सा मैच चालू है देखते। तो उन्होंने भी सब देखा कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं नर नारायण ऋषि वहां पर हैं। तो फिर अग्निदेव संतुष्ट हुए, तो अग्निदेव ने अर्जुन को पूछा कि तुमने जो सेवा की है अब अच्छी से ढकार ली अग्निदेव, 15 दिन तक खाए उस वन को, और उसके बाद फिर संतुष्ट होने के बाद अर्जुन से पूछे कि मैं तुम्हें क्या वरदान दूं। तो अर्जुन को वो रथ और वो सब कुछ उसके साथ, उसका एसेसरीज, गांडीव धनुष, 2 तुणीर और वो जो 4 घोड़े, वो अग्नि देव के द्वारा डोनेशन। ऐसा नहीं कि अग्नि देव ने उधर लिख दिया रथ पर, डोनेटेड बाय अग्नि। चमचमाता हुआ रथ मिला। और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान श्री कृष्ण अग्निदेव से पूछे मुझे भी कुछ वरदान दो। अग्निदेव, आप तो वरदराज हैं, आपसे तो हमें वरदान लेना चाहिए। भगवान कहे कि नहीं, यदि मेरे मित्र को वरदान दे रहे हो तो मैं भी मित्र हूं इसका, तो मुझे भी वरदान कुछ मिलना चाहिए। तो अग्निदेव शर्माते हुए पूछ रहे हैं, आप पूछो क्या चाहिए आपको। उन्हें भी थोड़ा लगा कि हमारा भी कुछ है, भगवान मांग रहे हैं कुछ हमसे, कुछ वट है हमारा भी। तो भगवान ने देखिए क्या वरदान मांगा, अग्निदेव से वरदान मांगते हैं भगवान कि मुझे एक वरदान दो कि मेरी मित्रता अर्जुन के साथ नित्य रूप से बनी रहे। ये भगवान जो वरदराज हैं वो अग्निदेव से वरदान मांग रहे हैं कि कभी भी मेरी और अर्जुन हमारी यारी बनी रहे, तो दोस्ती हमारी बनी रहे। ये भगवान ने वरदान मांगा अग्निदेव से। तो क्योंकि अर्जुन का ये रथ ऐसा रथ और इसके ऊपर हनुमान जी, सोचिए इस रथ में क्या क्या गुण थे, लक्ष्मी देवी, हनुमान जी, लक्ष्मीपति, अग्निदेव द्वारा दिया गया सोमदेव का रथ और चित्ररथ के घोड़े, वरुण देव का गांडीव और तुणी और ये सब होने, ये सब कुछ यदि अर्जुन केवल इतना लिस्ट दुर्योधन को बता देता कि देखो ये रथ पे कौन कौन है, तो दुर्योधन वो लिस्ट देखकर ही भाग जाता धृतराष्ट्र के पास, लिस्ट पढ़ाता, पिताजी पिताजी छोड़ो अब ये युद्ध नहीं जीतने वाले हम। और अंतिम कारण स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनका सारथ्य कर रहे थे। तो ये सब कारणों के वजह से अर्जुन यहां पर अपने संजय धृतराष्ट्र को इसी श्लोक में बता रहे हैं कि आगे कुछ सुनना है क्या, यहां पर देख लो सारे संकेत सारे लक्षण अर्जुन के विजय के मैं बता रहा हूं, परंतु इन सब के बावजूद भी धृतराष्ट्र को आशा थी कि मेरा पुत्र कुछ तो करेगा, अरे कुछ तो कर कर दिखाएगा, कम से कम ब्रॉन्ज मेडल तो लेकर आएगा। तो यहां पर लक्षण दिखा दिए संजय ने इस एक श्लोक में, इसलिए इस श्लोक के द्वारा समझ में आ रहा है बहुत सी बातें। सबसे पहले तो भगवान श्री कृष्ण वो अर्जुन के साथ अपना कैसी अपने घनिष्ठता कैसे दिखा रहे हैं वो इस श्लोक में दिख रहा है, और धृतराष्ट्र को संकेत संजय ने दे दिया कि विजय होने वाली है इन्हीं की। और इसके पश्चात फिर अब इन सब के शंखों की सूची दी जाएगी, भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम क्या है, अर्जुन के शंख का नाम क्या है, सभी अलग अलग जो शंख बजे अब पांडव सेना की तरफ से, उन सब शंखों के नामों की सूची होगी जिसकी चर्चा हम करेंगे अगले बुधवार। तो सारे शंख बजेंगे अगले बुधवार। बोलो भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। किसी का कोई प्रश्न है? ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, हरे कृष्ण।